ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरं। हरे कृष्ण। आज का ये भागवतम सत्र पे आए हुए सभी वैष्णव को हम स्वागत करते हैं। तो क्रमानुसार आज हम श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंद 11 अध्याय का 6 और 7 श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। 6 नंबर श्लोक का परपट नहीं है, इसलिए केवल मैं इसका अनुवाद पढ़ूंगा एवं 7वां नंबर श्लोक ब्लैकबोर्ड में लिखा गया है। सब मेरे पीछे पीछे बोलने के लिए प्रयास कीजिएगा। श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंद श्लोक अध्याय 11। अध्याय का नाम है इंद्र द्वारा असुरों का संहार। श्लोक संख्या 6। सो अहं दुर्मायिनास्ति अद्य वज्रेण सत पर्वणा शिरोहरिषे मंदात्मान घटस्व ज्ञानवीशः। आज मैं वही शक्तिशाली व्यक्ति हजारों तेज धारों वाले अपने वज्र में तुम्हारे सिर को शरीर से काट कर अलग कर दूंगा। यद्यपि तुम माया द्वारा पर्याप्त चमत्कार दिखा सकते हो, किंतु तुम्हारा ज्ञान अति अल्प है। अब तुम अपने परिजनों तथा मित्रों सहित युद्धभूमि में ठहरे रहने की चेष्टा कर लो। श्री बलिर्वाच संग्रामे वर्तमानानां कालाचोदित कर्मणा कीर्तिर्जयो अजयो मृत्युः सर्वेषां सुरनुक्रमात्। श्रीबलिरुवाच संग्रामे वर्तमानानां कालाचोदित कर्मणां कीर्तिर्जयो अजयो मृत्युः सर्वेषां सुरनुक्रमात्। श्रीबलिरुवाच संग्रामे वर्तमानानां कालाचोदित कर्मणां कीर्तिर्जयो अजयो मृत्युः सर्वेषां सुरनुक्रमात्। कोई वैष्णवी बोलेंगे? श्लोक का शब्दानुवाद, श्री बलिर्वाच। बलि महाराज ने कहा, संग्रामे युद्ध भूमि में वर्तमानानाम, यहाँ जो लोग उपस्थित हैं उनका, काल चोदित, काल के प्रभाव से कर्मणाम, लड़ने या अन्य कार्यों में लगे मनुष्यों के लिए कीर्ति ही जस, जय विजय, अजय हार, मृत्यु मृत्यु सर्वेशाम सबकी स्यु होनी चाहिए अनुक्रमात क्रमशः। श्लोक का अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्लोक का अनुवाद, बलि महाराज ने उत्तर में कहा, सभी लोग जो इस युद्ध भूमि में उपस्थित हैं निश्चय ही नित्य काल के बस में हैं, और वे अपने अपने नियत कर्मों के अनुसार क्रमशः यश विजय पराजय तथा मृत्यु प्राप्त करेंगे। तात्पर्य, यदि कोई युद्ध भूमि में विजयी होता है तो वह ख्याति पाता है, किंतु यदि वह विजयी न होकर हार जाता है तो वह मर सकता है। जीत या हार तो इस तरह की युद्ध भूमि में या जीवन संघर्ष में युद्ध क्षेत्र में संभव है ही। सब कुछ प्रकृति के नियमों के अनुसार घटित होता है। प्रकृति क्रियमाणानी गुणे कर्माणि सर्वशः, क्योंकि बिना किसी अपवाद के हर जीव प्रकृति के गुणों के अधीन है, अतएव विजयी या पराजित होना उसके बस में नहीं है, अपितु वह प्रकृति के बस में होता है। इसलिए बलि महाराज अत्यंत विचारवान थे। वे जानते थे कि युद्ध शाश्वत काल द्वारा नियोजित है, और काल के वशीभूत होकर मनुष्य को अपने कर्मों का फल स्वीकार करना होता है। अतएव इंद्र द्वारा यह धमकी दिए जाने पर भी कि वह बलि महाराज को वज्र से मार डालेगा, बलि महाराज रंच मात्र भी भयभीत नहीं हुए। यही क्षत्रिय धर्म है। युद्धे च पलायनम, भगवद गीता 18:43। क्षत्रिय को सभी परिस्थितियों में विशेषकर युद्ध भूमि में अत्यंत सहनशील होना चाहिए। अतः बलि महाराज ने बता दिया कि यद्यपि स्वर्ग का राजा जैसा व्यक्ति उन्हें धमका रहा है, किंतु वे मृत्यु से तनिक भी भय नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्तं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणे पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संग्राम वर्तमानानां काल चोदित कर्मणां कीर्तिर्जयो अजयो मृत्युः सर्वेषां सुरनुक्रमात्। बलि महाराज ने उत्तर में कहा, सभी लोग जो इस युद्ध भूमि में उपस्थित हैं निश्चय ही नित्य काल के बस में हैं, और वे अपने नियत कर्मों के अनुसार क्रमशः जस विजय पराजय तथा मृत्यु प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण। मैं सर्वप्रथम अखिल ब्रह्मांड के नायक, सचराचर जगत का मालिक, परम ब्रह्म परम धाम पुरुषं पवित्रं भवान श्री श्री राधा राशिहर जी के चरण कमल कोटि को नमन करते हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र जनक नंदिनी सीता ठाकुरानी लक्ष्मण सहित उनके अति प्रिय सेवक हनुमान जी के चरण कमल में मेरा सत्य कोटि बार नमन करते हुए, महावदान्य अवतार महाकारुणिक पति तपावन श्री श्री गोनिताई के चरण कमल में मेरा सत्य कोटि बार नमन करते हुए, उनके अति प्रिय भक्त धर्म धुरंधर श्रील अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जो कि समग्र विश्व में हरिनाम का प्लावित हरिनाम का बन्या कृष्ण भक्ति प्रदान किए, श्रील अभयचरणारविंद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमल में मेरा कोटि कोटि बार नमन करते हुए यहाँ पे उपस्थित सभी भगवत प्रेमियों वैष्णव वैष्णवी को मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। क्योंकि हमारा अयोग्यता होते हुए भी इस व्यासन में हमको बैठने के लिए सुयोग दिया गया है, इसलिए हम आप सभी वैष्णव का आभारी हैं। हरे कृष्णा। तो इसका जो पिछले श्लोक में हम काल सुने थे कि देवराज इंद्र बता रहे हैं कि कोई भी बिना तपस्या से साधन से उच्च लोक नहीं जा सकता, उसको नरक लोक भेजा दिया जाता है अगर कृत्रिम साधन के माध्यम से अगर वो जाने के लिए प्रयास करे तो इसका इसके बाद का श्लोक जो छह नंबर श्लोक है उसमें हम प्रभुपाद जी महाराज बता रहे हैं कि देवराज इंद्र बलि महाराज को बता बोल रहे हैं कि हजारों तेज धारों वाले अपने वज्र से तुम्हारे सिर को शरीर से काट कर अलग कर दूंगा। कौन बोल रहे हैं? देवराज इंद्र बोल रहे हैं। यद्यपि तुम माया द्वारा पर्याप्त चमत्कार दिखा सकते हो किंतु तुम्हारा ज्ञान अति अल्प है। अब तुम अपने परिजनों तथा मित्रों सहित युद्ध में ठहरे रहने की ही चेष्टा कर लो। देवराज इंद्र बता रहे। तो आज का जो श्लोक है उसमें देवराज इंद्र बलि महाराज को बोल रहे हैं कि तुम युद्ध में तुम्हारा आज मृत्युवरण होगा, फिर भी बलि महाराज असुर कुल में जन्म होते हुए भी भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं देवराज इंद्र को। वो बता रहे हैं कि इस संसार में जो कुछ घटित हो रहा है प्रकृति क्रियमाणानि प्रकृति के द्वारा ही हो रहा है। आप बोल रहे हो कि मेरे द्वारा ही मैं तुमको मृत्यु का घाट उतार दूंगा, लेकिन ये वास्तव में तुम मृत्यु का कारण नहीं हो। सभी लोग जो इस शुद्ध भूमि में उपस्थित है निश्चय नित्य काल के बस में हैं, और वे अपने अपने नियत कर्मों के अनुसार क्रमशः जस विजय पराजय तथा मृत्यु प्राप्त करेंगे। भगवान बोल रहे मदबाद ही बात है, सूर्य तपति मदभयात अग्नि दहति वर्षति इंद्र। मेरा निर्देश में सब कुछ हो रहा है, सृष्टि स्थिति प्रलय मेरे निर्देश में हो रहा है। बलि महाराज प्रहलाद महाराज का प्रपुत्र नाती होते हुए भी शुक्राचार्य उनको उपदेश दे रहे हैं। शुक्राचार्य जैसा प्रख्यात गुरु का पदस्य करके भी अगर सद्ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है तो उनको त्याग करने के लिए प्रस्तुत हो गए हैं। देखिए बलि महाराज बामन हम देखते हैं, बामन देव भी जब आए बलि महाराज से तीन पग भूमि लेने के लिए तो शुक्राचार्य मना करने के बाद भी बलि महाराज उनको उनका बात सुने नहीं। भक्त का ये स्वभाव होता है, भक्त चाहता है कि हर समय वो आत्मज्ञान में रहता है। वो संसार में अगर उसके जीवन में कुछ कठिनाई क्यों ना आए लेकिन उसको सहन करने के लिए उसके पास बल रहता है आत्मज्ञानी व्यक्ति। क्योंकि हम बोल रहे हैं मेरा कर्म का भागीदार मैं हूं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन भगवान का अगर निर्देश नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा जितना प्लानिंग होता है हम ये करके हम कुछ भी प्लानिंग करके हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन कभी को प्लानिंग फेल हो जाता है। क्योंकि प्रकृति भगवान बोलते हैं मैं निर्देश में घास पत्ता भी नहीं हिलता। प्रकृति क्रिया माणानी गुणे कर्माणी सर्वश अहंकार विहुणात्मा करता हम इति मन्यते। सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है लेकिन अहंकार के बस मूढ़ व्यक्ति समझ जाए कि मैं ही कर रहा हूं।
ये ज्ञान बलि महाराज खुद दे रहे हैं देवराज इंद्र को। वो बोल रहे हैं कि यदि वह विजयी न होकर हार जाता है तो वह मर सकता है। जीत या हार तो इस तरह की युद्ध है, युद्ध में या जीवन संघर्ष से युद्ध क्षेत्र में संभव है ही। इस जीवन एक संघर्ष है, युद्ध ही है, सब हम युद्ध कर रहे हैं। युद्ध में दो ही होता है, अगर युद्ध में हम परास्त हो जाएंगे, अगर कोई अगर धार्मिक युद्ध कर रहा है युद्ध में परास्त भी हो जाए लेकिन उसको पराजित नहीं कहा जाता। जैसा अर्जुन को भगवान बोले, अर्जुन तुम अगर क्षत्रिय हो, तुम्हारे रोम रोम में क्षत्रिय का गुण है, तुम अगर क्षत्रिय होकर अगर युद्ध में परास्त हो जाओगे तो तुम स्वर्गलोक लाभ करोगे, अगर विजय लाभ करोगे तुम हस्तिनापुर का साम्राज्य का भागीदार बनोगे। इसी प्रकार अगर हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करते करते भक्ति में अगर प्रगति नहीं भी हो पाया, हमारे लक्ष्य हासिल नहीं भी कर पाए, लेकिन फिर भी भक्त को उसमें व्यस्त नहीं होना चाहिए। कहा जाता है स्वल्पाप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत्व भयात्। भक्ति इतना प्रखर है कि कहा जाता है कोई आंख बंद करके भी चले फिर भी उसका एक्सीडेंट नहीं होता। ऐसा कहते हैं ना, रेलवे का पटरी में ट्रेन है, ज्यादा टाइम नहीं रुकता, 5 मिनट 10 मिनट रुकेगा फिर चले फिर दूसरा ट्रेन आएगा। उसी प्रकार भक्त भक्ति लाइन में है तो इसका मतलब यह है कि वो एक जन्म नहीं तो दूसरा जन्म जरूर भगवान के चरण कमल प्राप्त करेगा, क्योंकि वो भगवान के सेवा में लगा हुआ है। भगवान तो कह रहे मृत्यु सर्वहरष्य, मृत्यु रूप में मैं सब कुछ हरण कर लेता हूं, लेकिन हमारा जो कर्म है भक्ति का, जो भक्ति मार्ग जो है भक्ति किए हैं वही हमको हर समय मदद कर सकता है। जैसा देखिए आप भक्ति सेवा में कितना शक्ति है, आप इसका एक उदाहरण हम आपको पेश कर रहे हैं, आप जान सकते हैं कि भक्तों कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। जैसा बलि महाराज को जितना इंद्र प्रताड़न कर रहा है, मैं चक्र की बराबर वो बोल रहा है कि हजारों तेज धारों वाले अपने वज्र से तुम्हारे सिर को शरीर से काट कर अलग कर दूंगा, इनको पटान गाली दे रहा है फिर ही बलि महाराज कुछ भी उसका रिएक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रसन्न आत्मा, जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति है, जो आत्म साक्षात्कार लाभ किया है, हर समय हर स्थिति में वो आनंद में रहता है। प्रभुपाद जी महाराज के लाइफ में कितना कष्ट आया जीवन में भक्ति में, उनके जिसको शिष्य बनाए वो लोग कंप्लेन की कोर्ट में केस किए, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी महाराज पीछे हटे नहीं। जैसे अभी मैराथन चल रहा है, मैं आपको एक उदाहरण पेश कर रहा हूं। एक बार हम बुक डिसीजन करने के लिए जा रहे थे तो एक घर में प्रीचिंग कर रहे थे, करते करते एक आदमी बोला मैं इंग्लिश प्रभुपाद जी का इंग्लिश भागवतम सेट लूंगा। तो हमारे गाड़ी लगा है लगभग 5-6 किलोमीटर दूर में जहां पे हम बुक डिसीजन कर रहे हैं। तो जब बोला था हम कितना उत्साह के साथ चलते चलते आए गाड़ी के पास बुक्स लेने के लिए, तो इतना सारा बड़ा बड़ा मोटा किताब है, हमारे इतना वजन नहीं है, इतना शक्ति नहीं कि उस समय आज से 10-15 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो एक भक्त मेरे को मदद किए बुक डिसीजन कर उसको पहुंचाने के लिए। तो वहां पे जब गए तो जो आदमी किताब लेने के लिए बोल रहा था वो आदमी ही नहीं है वहां पे, इतना दूर से हम लेके आए कंधे में वो लेने वाला ही नहीं है। उसका कोई पति पत्नी दोनों थे उस समय जब मैं उनको प्रीचिंग किया, एवं एक कुत्ता था, उसका बच्चा नहीं, वो कुत्ता को अपने बच्चे के रूप में रखा है। तो क्या हुआ, जब मैं गया कलिंग बेल दबाए हम तो टीवी चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई मेहमान आए उनके घर में। जब कलिंग बेल खोले तो कुत्ता तुरंत आके काटने के लिए आ गया। तो उसके एक नाम था, क्या नाम था पता नहीं, एक नाम मैं भूल गया हूं, उसका जो घरवाली है उसका नाम उच्चारण करते तुरंत वो सोफा में बैठ गया, टीवी चालू है। तो उसको उनका वाइफ को बोले कि हम अब बोले थे गीता लेने के लिए, आप ले भागवतम लेने के लिए लेके आया हूं। बोले नहीं वो तो चले गए अपने कंपनी में ड्यूटी में चले गए। तो देखिए हम इतना दूर से लेके आए हैं, प्रसाद भी नहीं पाए, भूख लग रहा है फिर भी, तो बाद में क्या करूं। फिर हम ऐसा लेके जा रहे हैं दो खांदे में, दो माने सेवन सेवन ये द्वादश स्कंद भागवत है, मोटा मोटा किताब है, दो खांदे में लेके जा रहे हैं। तो बीच में एक आदमी सोच रहे, प्रभु क्या परीक्षा है आपका, देखिए इतना दूर से आए लेने के लिए, कोई नहीं ले रहा है, क्या करूं। तो बाद में एक आदमी बोला, महाराज जी क्या है, नहीं कि भगवतम है, भगवतम सेट है, एक बोले थे हमको ऑर्डर दिए थे लेने के लिए, देने के लिए आए, लेकिन वो है ही नहीं, तो इसलिए हम वो तकलीफ भी हो रहा है लेके जा रहे हैं। अभी इतना दूर में गाड़ी है, कैसा हम पहुंचेंगे। ठीक है आइए हमारे घर में थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, पानी थोड़ा पी के बाद में निकले। तो जब पानी पीने के टाइम पे मैं थोड़ा उसको भी, वो भी देख रहा है भागवतम, कैसा कितना सुंदर सुंदर पिक्चर है प्रभुपाद जी का, जो भगवान कृष्ण का लीला का सा। तो लेते ही देखा ही, वो तुरंत बोल दिया मैं ये लेना चाहता हूं। तो जितना इंग्लिश का भगवद गीता था, चैतन्य ये नेक्टर ऑफ डिवोशन इंग्लिश का भी था, लॉर्ड चैतन्य टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य इंग्लिश का, सब कुछ ले लिया पूरा, जो भी उड़िया का भी किताब था वो भी ले लिया, दूसरे आदमी ले लिया, बाजू में दो था, मैंने पूरा खाली बैग करके हम आए। तो मेहनत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो इसका फल कभी भी लॉस नहीं होगा, भक्ति का इतना शक्ति है। इसलिए हमको उत्साह निश्चय धैर्य, उत्साह के साथ धैर्य के साथ हमको भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। श्रीमद भगवद गीता 11 अध्याय 53 श्लोक में कहा गया है, नाहं वैदेन्य तपस्या न दाने न चेज्जया सक्य एव विधो द्रष्टुं दृष्ट बानसी मांग यथा। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, ये अर्जुन तुम दिव्य नेत्रों में जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, उसे ना तो वेदाध्ययन से, ना कठिन तपस्या से, ना दान से, ना पूजा से ही पाया जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे नहीं, मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। हम भगवान के कृपा से ही हम भगवान को दर्शन कर सकते हैं, गुरु आचार्य जी का वैष्णव का कृपा से भगवान को दर्शन कर सकते हैं। जैसा हम देखते हैं पार्वती जी अभिशाप दे दिए चित्रकेतु महाराज को कि तुम वृत्रासुर बन जाओ, तुम राजा होने का लायक नहीं हो, फिर भी वृत्रासुर क्या किए, वो चाहे तो उसका अभिशाप दे सकते थे, लेकिन आनंद में उसको स्वीकार कर लिए। असुर कुल में जात होते हुए भी दिव्य गुण प्रकट हो रहा है। हम नहीं कह सकते कि कोई असुर परिवार में, कोई भौतिक दुनिया में कोई है, मतलब घर संसार में लगा हुआ है, उसके परिवार में कोई भक्त नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है। अगर कहा जाता है कि अगर कोई महान वैष्णव आचार्य का अगर कृपा हो जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है। केवल हमको पुण्य शरणागत के साथ भगवान का भक्ति आचरण करना चाहिए। हम श्री कृष्ण बुक्स में भी देखने को मिलता है, जब भगवान, जब जरासन 17 बार आक्रमण किया मथुरा को, जब 18 बार आक्रमण करने के लिए जा रहा है तो मथुरा के दक्षिण दिशा से कालजवन आक्रमण किया, लेकिन भगवान क्या किए, मथुरा से सभी जितना सारे मथुरा वासी को समुद्र के अंदर एक विराट वट प्रसाद बना के वहां पे उनको रखे। उस समय जब मथुरा उसका दायित्व दे दिया बलराम जी को, और भगवान कृष्ण आए युद्ध करने के लिए, लेकिन कालजवन ये सोच रहा है कि मेरा शक्ति में मैं भगवान को काबू कर लूंगा, पकड़ लूंगा, लेकिन भगवान का लीला कुछ अलग है। वो क्या किए, तुरंत कालजवन उनका पीछा करने लगा, भगवान दौड़ने वहां से युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ने लगे, तुरंत उनको पकड़ने के लिए जा रहा है। वो सोच रहा है कि मैं अभी पकड़ लूं, अभी उनको बस कर लूं, क्योंकि वो युद्ध के लिए इच्छा उसका क्षत्रिय का गुण था, उसका एक उसके जैसा समान युद्धा का चाहिए था युद्ध करने के लिए, तो इतना उसके पीछा कर रहा है, लेकिन भगवान क्या किए, गुफा के अंदर चले गए, जाके छुप गए। वहां पे महाराज मुचुकुंद थे, सहन किए थे, लेकिन मुचुकुंद का दर्शन करते ही कालजवन का जल के राख हो गया। तो भगवान कब क्या करेंगे, हमारे सामर्थ्य के बाहर है, हम नहीं समझ सकती। नारद महर्षि महाराज युधिष्ठिर को बता रहे हैं, सदा संतुष्ट मनसः सर्वा शिव मयादिशः सर्करा कंटका जिभ्यो जथो पानो रजः शिवम, अर्थात जिसका पाव में सही जूता हो उससे कंकण पत्थरों तथा कांटों में चलने में कोई भय नहीं रहता, उसके लिए सभी कुछ कल्याणप्रद है। इसी प्रकार जो सदैव आत्मतुष्ट है उसे दुख नहीं सताते, वह सर्वत्र सुख का अनुभव करते हैं। यहां पे बलि महाराज बता रहे हैं वो जानते थे कि युद्ध शाश्वत काल द्वारा नियोजित है और काल के बसीभूत होकर मनुष्य को अपने कर्मों का फल स्वीकार करना होता है। आत्मनिवेदन, हम आत्मनिवेदन में बलि महाराज को लेते हैं, आत्मनिवेदन में संपूर्ण रूप में शरणागत भक्त हैं। बलि महाराज देवराज इंद्र का बारंबार प्रताड़न करने के बाद भी जान रहे थे कि मेरे ये जन्म या मृत्यु जो भी है भगवान की इच्छा से हो रहा है। कभी भी बलि महाराज थोड़ा सा भी व्याकुल नहीं हुए थे, कभी भी व्याकुल नहीं हुए थे। इसलिए जो प्रकृति में कृष्ण के प्रति शरणागत होता है, पूर्ण शरणागत हो जाता है, वही संसार में हर स्थिति में अपने को चलने के लिए योग्य बन जाता है। सप्तम स्कंद 15:19 श्लोक में कहा गया है, असंतुष्ट असंतुष्टस्य विप्रस्य तेज अविद्या तपोजसः श्रवंतिन्द्रिय लोल्येन ज्ञानं च एव किज्यते। भक्त या ब्राह्मण जो आत्मतुष्ट नहीं होता उसका आध्यात्मिक ज्ञान, विद्या, तपस्या तथा कीर्ति, उसके इंद्रिय उसका इंद्रिय तृप्ति के कारण क्षीण हो जाते हैं और उसका ज्ञान शने शने लुप्त हो जाता है। इस संसार में दुख का कारण वही है, हम भक्ति में आनंद नहीं पा रहे हैं, इसके लिए भौतिक चीज के प्रति हमारा आकृष्ट हो जाता है। क्योंकि जो कहा जाता है जो आत्मतुष्ट व्यक्ति एक गिलास पानी भी के भी दिन भर रह सकता है, लेकिन जो आत्मतुष्ट व्यक्ति नहीं है उसको संसार का सब कुछ क्यों ना दे फिर भी वो सुखी नहीं हो सकता। देवराज इंद्र देखिए, जब पृथ्वी महाराज के चरित्र हम देखते हैं, पृथ्वी महाराज जब यज्ञ कर रहे थे देवराज इंद्र आके उनको घोड़े को चुराने के लिए आ गए। देवराज इंद्र ऐसा नहीं कि स्वर्ग में रहते हुए भी सुखी है, ऐसा नहीं, वो हर समय उनका पद के ऊपर विपद है, वो सब समय सोचते हैं कि मेरा पद को कोई छीन ना ले। इसलिए कोई अगर तपस्या करता है तो वो सोचते हैं कि शायद मेरे सिंहासन को छीनने के लिए तपस्या कर रहा है। इसलिए आप देखते हैं देखिए ध्रुव महाराज की लीला में कितना परीक्षा करने के लिए कितना सारा मैंने देवता लोग कितना उनको तकलीफ दिए, वायु देवता, सूर्य देवता कितना उनको तकलीफ आया उनके लिए, फिर भी भक्ति में। इसलिए जो लक्ष्य, एक लक्ष्य भक्ति में हम आए तो एक लक्ष्य लेके आए हैं। लक्ष्य क्या है, भगवान को भक्ति करना, साधु वैष्णव का सेवा करना, गुरु का अनुगत्य में अपने भजन करना, ये लक्ष्य लेके हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। लेकिन हमारे अगर लक्ष्य नहीं है बस चलो हम ऐसा ही लाइफ बिताएंगे तो कभी भी हम जीवन में सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि हर समय जो भक्ति में आ रहा है तो माया के विरुद्ध काम हम कर रहे हैं। इसलिए मैं हर समय हमको परीक्षा करेगा, कितने ही हम टेस्ट करेगा हमको। इसलिए इस्कन में रहते हुए भी, सालों सालों में रहते हुए भी कभी भी मन विचलित हो जाता है, भक्ति से च्युत हो जाते हैं, क्यों? सबका कारण क्या है बताइए? हम साधु वैष्णव के वाक्य के प्रति हमारा विश्वास नहीं है, भगवान के प्रति विश्वास नहीं। भगवान बोल रहे हैं अनन्य चिंतन ते मांग जे जना पर्युपास तेसांग नित्या भी जुगता नम युगक्षम बहाम्य। मैं उसका सब कुछ बहन करता हूं जो मेरे को स्मरण करता है, मेरा सेवा करता है, लेकिन हमारा विश्वास नहीं है। देखिए देवराज इंद्र इतना सब समय सोच रहे कि मेरा पद कोई छीन ना ले, बलि महाराज को गाली दे रहे, बोले तुम, मैं तुमको अभी बच्चे के द्वारा प्रहार कर दूंगा, गला काट दूंगा, इतना तेज है इसका, इसका मतलब क्या है? लेकिन बलि महाराज थोड़ा सा विचलित नहीं हुए। जैसा हम बाहर जाने बुक डिसीशन करने के लिए जा रहे, कितना लोग कितना बात बोलते हैं, प्रीचिंग में कितना बता रहे हैं, लेकिन जो प्रकृत में साधु शास्त्र गुरुवाक्य के प्रति जिसका दृढ़ संकल्प है वो कभी विचलित नहीं होता। हरिदास ठाकुर के जीवन में तकलीफ आया, नित्यानंद महाप्रभु के जीवन में तकलीफ आया, प्रभुपाद जी के जीवन में आया, फिर भी अपने लक्ष्य के प्रति कभी भी पीछे हटे नहीं। यही भक्तों का स्वभाव है। बलि महाराज जान रहे थे कि जन्म मृत्यु भगवान के हाथ में है, ये देवराज इंद्र के हाथ में भी नहीं है, ना उसका वज्र के हाथ में नहीं है। भगवान अगर चाहेंगे, भगवान बोलते हैं ना मुकं करोति बाचालंग पंगुलंग है तिगिरी, भगवान कृपा से गुड़े मुख व्यक्ति बात कर सकता है, जिसका पैर नहीं है वो भी पहाड़ लंघन कर सकता है। तो क्यों ये भौतिक संसार से अगर हमको उद्धार होना है, हमको जीवन में आनंद शांति चाहिए, तो क्यों हम भगवान का भक्ति नहीं करेंगे? कहा जाता है काम सप्तम स्कंद भागवत 15 अध्याय 20 नंबर श्लोक में कहा गया है, काम शांत ही क्षुत्रुंग भ्यांग क्रोध से फलोदयात जने जति नरभ्येसा जित्वा भुक्त्वा हितो भुकः। अर्थात भूख तथा प्यास से पीड़ित मनुष्य की प्रबल शारीरिक इच्छाएं तथा आवश्यकता भोजन कर लेने के बाद निश्चित रूप से तुष्ट होती है। इसी प्रकार यदि कोई क्रोध करता है तो प्रताड़ना तथा प्रताड़ना द्वारा क्रोध तुष्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ तक लालच की बात है, यदि लालची व्यक्ति संसार की सभी दिशाओं को जीत ले या संहार की प्रत्येक वस्तु का या संसार की प्रत्येक वस्तु का भोग कर ले फिर भी वो तुष्ट नहीं होता, कभी तुष्ट नहीं हो सकता। जो लालची जिसको बहुत भोग करने का इच्छा है, आर चाहिए, वो कभी तुष्ट नहीं हो सकता, जितना भी उसको संपत्ति, विश्व का संपत्ति भी क्यों ना दे। हमारा धन क्या है? कृष्ण भक्ति, भगवान का भक्ति करना, ये हमारा सबसे बड़ा धन है। ये धन हमसे कोई छीन ना ले, इसके लिए हमको हर समय सतर्क रहना चाहिए। एवं उसको छोड़ के जो भी धन मिले वो हमको तकलीफ ही देगा। भगवान तो बोल रहे हैं यही संस्पर्श जब होगा दुख जो न एवते आद्यंत बंत कौंतेय न तिसु रमते बुध। जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसमें कभी रमण नहीं करता, जिसका सुख का आदि है अब अंत है, वो सुख क्यों हमको चाहिए? जो नित्य सुख है, ट्रांसेंडेंटल है, अप्राकृत है, उस सुख के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताते हैं, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण न तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश, सूर्यास्त किरण जैसे अग्नि अग्नि ज्वाला चय स्वाभाविक कृष्ण तेज प्रकार शक्ति माया, अर्थात कृष्ण का नित्य दास होना जीव का वैधानिक स्थिति है, क्योंकि जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति है और वह भगवान का ही अंश है। उसी प्रकार जिस तरह सूर्य प्रकाश से अग्नि का एक कण है, जिस प्रकार सूर्य का एक कण होता है चिंगारी जैसा, उसी प्रकार भगवान जीव भगवान का ही अंश है। इसलिए कभी भी हमको भगवान के सेवा से विच्युत नहीं होना चाहिए, किसी भी स्थिति क्यों ना हो। एक बार हम भगवद गीता प्रचार करने के लिए गए थे आंध्र प्रदेश, तेलुगु का भाषा हमको मालूम नहीं है, खाली इतना ही बोलते थे एनडी भगवद गीता टिस्कंडी मंची पुस्तकमलु, माने थोड़ा थोड़ा ही तेलुगु मालूम था, लेकिन कुछ भी मालूम नहीं। उसको जैसा व्यक्त करना चाहिए उसको समझ नहीं पा रहा था, लेकिन हम क्या बोलेंगे, उसका तेलुगु भाषा किसी का कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन कैसा प्रभुपाद जी का कृपा से, भगवान वैष्णव का कृपा से कैसा बुद्धि आ जाता है। देखिए ये जो ऐसा पानी का बोतल है, ऐसा बोतल हम एक लेके गए थे, पानी थोड़ा निकाली ऐसा कर दिए, वो सोच रहा है कि कोई तीर्थ क्षेत्र का पानी है, वो क्या कौन सा वाटर है ऐसा पूछा, तो मेरे हिसाब से उसको समझा दिया कि ये गंगा वाटर है, क्योंकि हमको गीता देना है, उसको किसी तरह प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसा कर दिया, जो कि इतना एक घंटा प्रीचिंग किए गीता भी नहीं लिया, जब उसको इतना ही कर दिया, बोले कि मेरे को भी थोड़ा दीजिए, बोला मैं उसको दिया, देते ही इतना खुश हो गया, तेलुगु का जितना किताब था भगवद गीता कृष्ण बुक्स सेल्फ लाइशन सब कुछ ले लिया, कुछ मालूम ही नहीं हमको, उसके भाषा मालूम नहीं है कुछ, केवल देखिए कैसा आप सेवा करने का इच्छा है आपका, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से वैष्णव का कृपा से भगवान की कृपा से ज्ञान आ जाता है, वो सब कुछ ले लिया। तो कहने का मतलब यह है कि जो सेवा करने के लिए सेवा मनोवृत्ति लेके इस संसार वैष्णव समाज में रहा है इस कण में, उसके लिए वो कभी भी उसके जीवन में हर समय उसके जीवन में भगवान हर समय उसको सुरक्षा देंगे, हर समय सुरक्षा देंगे। कहा जाता है जो भक्ति करता है उसके सभी देवादेव उसको मदद करते हैं, सभी का कृपा रहता है। इसलिए कोई ज्ञात अज्ञान सारे किसी का गलती भी हो जाए तो वैष्णव को क्षमा मांगना चाहिए, ऐसा नहीं कि मेरा ये है मेरा ये क्वालिटी है मैं ये कर सकता हूं, कभी भी नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी महाराज क्या बोल रहे हैं, मैं अब दास भी नहीं हूं, अभी दास बनने के लिए प्रयास कर रहा हूं। देखिए तो हम कौन क्या स्थिति में, हमारा क्या स्थिति है बताइए। इसलिए कहा गया है आत्मनिवेदन तोया पदे करी हरिनु परम सुखी, दुख दुरे गेल चिंता न रहिल चौदी के आनंद देखी। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं आत्मनिवेदन है, प्रभु मैं आपके पास अभी आत्मनिवेदन कर रहा हूं, आत्मनिवेदन करके आनंद महसूस कर रहा हूं, दुख दूरे गेला चिंता न रहे, मुझे अभी चिंता नहीं है क्योंकि मैं आपके शरणागत हुआ हूं, चौधरी के आनंद ही आनंद दिख रहा है मेरे को। देखिए भक्ति में जब शरणागत हो जाता है, जैसा बच्चा संपूर्ण रूप में पिता माँ के ऊपर आश्रय लेता है, पिता के ऊपर आश्रय लेता है, कितना सुखी महसूस करता है। लेकिन हम बोलेंगे मेरे को मेरा शक्ति मेरे को मेरा ज्ञान मेरे को मदद करेगा, मेरे शक्ति मेरे को मेरे धन मदद करेगा, कभी नहीं हो सकता। यहां पे बलि महाराज जी देवराज इंद्र को बता रहे हैं, इंद्र द्वारा यह धमकी दे जाने पर भी कि वह बलि महाराज को वज्र में मार डालेगा, बलि महाराज रंच मात्र भी भयभीत नहीं हुए। यह क्षत्रिय धर्म है युद्ध च पलायनम, क्षत्रिय को सभी परिस्थितियों में विशेषकर युद्ध भूमि में अत्यंत सहनशील होना चाहिए। बलि महाराज ने बता दिया कि यद्यपि स्वर्ग का राजा जैसा व्यक्ति उन्हें धमका रहा है किंतु मृत्यु से तनिक भी भयभीत नहीं है। जैसा अर्जुन जब द्रोणाचार्य से पूछे अर्जुन तुमको क्या दिख रहा है, ये गुरुदेव मेरे को केवल आंख ही दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन दूसरे जो थे कौरव लोग दुर्योधन दुशासन ये सब क्या से बोल रहे थे, मेरे को पेड़ दिख रहा है पक्षी दिख रहा है लेकिन आंख ही दिख रहा है, क्योंकि आंख में ही भेद करना है। इसलिए हमारा लक्ष्य क्या है, गुरु गौरांगा को प्रसन्न करना और जो हमको निर्देश दिया उनके हिसाब से चलना, इसको लेके हम अगर भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो जरूर हमको अगर फिसल भी गए तो हम हाथ उठा के ले जाएंगे। रूपा जी बोल रहे हैं ना, तुम चिंता मत करो, भक्ति में भक्ति मार्ग स्वीकार करो, भक्ति आचरण करो, मैं तुमको इस भव सागर से ले जाऊंगा। भक्ति विनोद ठाकुर एक सुंदर भजन गाते हैं, बोले कि एमन गौरांग बिना नहीं यार, हे न अवतार हवे की है छे, हे न प्रेम प्रचार, दुष्मति अति पातिर पाषंडी, प्राणी न मारिल करे, हरिनाम दिया हृदय सोधिल, जाची दिया घरे घरे। चैतन्य महाप्रभु प्रेम घर में जा के दे रहे हैं, ये कृष्ण प्रेम लीजिए, भक्ति लीजिए, भगवान को भगवान का नाम ग्रहण कीजिए। नित्यानंद महाप्रभु हरिदास ठाकुर घर घर में जाके प्रचार कर रहे हैं, कितना तकलीफ सहन करना पड़ रहा है, फिर भी वो मार किया प्रेम दिया, एमन दयाल कुथा है अच्छी, पिटाई करके भी पिटाई खा के भी कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं। इसलिए हम हमारे शरीर में आसुरी गुण है, ईर्ष्या द्वेष, हम भी एक हो सकता है हम भक्ति स्वीकार कर रहे हैं लेकिन भक्ति किए हैं भक्ति कर रहे हैं लेकिन हमारे जो प्रारब्ध कर्म के वजह से कुछ दुष्कृति कुछ रहे अभी है, अभी भी है, ईर्ष्या द्वेष अहंकार मद मच्छरता ये असुरी गुण है, इसको कैसा हम परास्त करेंगे, इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। हरिगुरु चरणारूपक अस्त्र के द्वारा इसको हम छेदन कर सकते हैं, क्योंकि ये असुर जब तक हमारे शरीर में हृदय में रहेगा कभी भी हम भव सागर से उद्धार नहीं हो सकते, भववदन से नहीं उद्धार हो सकते। जैसा हनुमान जी जब सीता जी को लेने के लिए ढूंढने के लिए जा रहे हैं तो साधु वेश धारण करके एक असुर वहां पे बैठा है, साधु वेश धारण करके जय श्री राम के नाम कर रहा है। हनुमान जी सोचे ये प्रभु का भक्त होगा, जब वहां पे जब गए बाद में बोले आप स्नान करके आओ, स्नान करने के लिए जब गए वहां पे मगरमच्छ के साथ युद्ध हुआ और खुद बोल रहे हैं कि ये साधु नहीं है ये असुर है, तुमको मारने के लिए ये तुम्हारा रास्ता रुकने के लिए वहां पे है। तो हम वैष्णव आए हैं, वैष्णव नाम कर रहे हैं गुरुपादाश्रय के सब ठीक है लेकिन हमारे जो अंदर में जो असुरी गुण है ईर्ष्या द्वेष अहंकार इसको कैसा हम जा सकता है, एकमात्र गुरु का निर्देश के प्रति हमारे पूर्ण विश्वास के साथ हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो तब हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। एवं हर समय गाइड का जरूरत है, ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं भक्ति कर रहा हूं मैं सब कुछ ठीक चल रहा है, कभी भी नहीं, हर समय उत्तम अधिकारी वैष्णव का सलाह लेना चाहिए। मेरा मन में अभी ये सोच रहे हैं, मैं ये विचार कर रहा हूं अभी क्या करूंगा कैसा इसका हाल हो सकता है, तब हम अगर उच्च अधिकारी का अनुगत्य में कहा जाता है कनिष्ठ अधिकारी मध्यम अधिकारी का संग करना चाहिए, मध्यम अधिकारी उत्तम अधिकारी का संग करना चाहिए, तब भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं। एवं हम बोल रहे जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है तो कभी भी हम नहीं आगे बढ़ सकते। तब ये मैराथन का समय है तो मैं एक दो आपको थोड़ा सा उदाहरण मैं बता रहा है, किसा प्रचार का कैसा महत्व है, कैसा प्रभुपाद जी महाराज का कृपा बनाई रहती है जो भक्त लोग भगवद गीता भागवतम प्रचार करते हैं। संकीर्तन बस जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जाते थे, एक बार गाड़ी मैंने मैराथन के समय में इतना उत्साह होता था, हर समय हमारा लक्ष्य रहता था कि हम फास्ट होंगे गाड़ी में। तो लक्ष्य एक बार ऐसा हुआ, तीन बस में लगभग 12 डेबुटी बुक डिसीशन करते हैं, तो हम उसमें से हमको फास्ट होना है, लक्ष्य होता है भगवत गीता के साथ मैंने प्रचार के साथ अच्छी तरह से करेंगे। तो हमको हर 10 दिन में पता चल जाए कि वो गाड़ी का भक्त कितना स्कोर किया, वो गाड़ी जो अच्छा बुक डिसीशन कर रहा कितना किया, उस हिसाब से हमारे भी मन में अभिलाष हो जाते हम भी उससे भी ज्यादा करें। तो जिस दिन गाड़ी आने वाला था मंदिर को, उस दिन हमारा स्कोर थोड़ा कम हो गया था, दूसरे जो भक्त अच्छी स्कोर किया था उससे कम हो गया था, गाड़ी स्टार्ट भी हो गया था मंदिर आने के लिए, लेकिन हमारा इच्छा था कि हम कैसा उससे फास्ट होंगे, मैंने अच्छे प्रचार करेंगे। तो गाड़ी स्टार्ट होने हो रहा है, हमको इच्छा कि गाड़ी अभी लीडर बोल रहे हैं कि गाड़ी टाइम हो गया चलो चलो चलो, लेकिन हम बुक रजिस्ट्रेशन करने का इच्छा है हम किस। तो एक दो आदमी आ गए गाड़ी के पास, महाराज जी मेरे को चैतन्य चरितामृत सीट लेना है। तो चैतन्य चरितामृत तुरंत गाड़ी में उतर के हम चैतन्य चरितामृत सीट ले लिए, फिर भी यार कुछ कम है तो क्या करें क्या। तो गाड़ी आ रहा है, बीच में प्रसाद पाने के लिए गाड़ी रुक गया, लेकिन हमको प्रसाद पाने का भी इच्छा नहीं, कैसा स्कोर ज्यादा होगा, तो गाड़ी रहेगी हम चले गए बुक रजिस्ट्रेशन करने के लिए। जा रहे हैं जाते जाते एक छोटा सा गांव में दो चार घर था, वहां पे प्रचार करने के लिए चले गए। तो जैसा जब देखे गीता श्री कृष्ण बुक्स आत्मविज्ञान देखते ही थोड़ा सा प्रीचिंग करते, एक आदमी को गीता देते ही जितना गांव में जो लोग थे सब एक 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 करके ले लिए, तो गीता बैग ही पूरा खाली हो गया। तो इतना आनंद आया, भूख प्यास भी बंद हो गया। और एक जगह ऐसा है, एक जगह में हमारा गाड़ी लीडर बोले कि यहाँ पे दो हॉस्पिटल है स्कूल है, मैं यहाँ पे आप यहाँ पे मैं रख देता हूँ गाड़ी, आगे से 5 किलोमीटर दूर गाड़ी है। लेकिन हम जब यहाँ पे उतरे तो देखे कोई है ही नहीं वहां पे, ना दुकान है ना घर है ना हॉस्पिटल है, कुछ भी नहीं है, पूरा सुनसान पड़ा है। देख कैसा परीक्षा देखिए, तो गाड़ी लगा है 30 किलोमीटर दूर में, बोले 5 किलोमीटर है लेकिन 30 किलोमीटर दूर गाड़ी लगा है, इधर कुछ है ही नहीं। लेकिन क्या करें, तो बाजू में लोगों को पूछे यहाँ पे कुछ गांव है क्या, तो हमको लेके गए वहां से लगभग 5-7 किलोमीटर अंदर एक स्कूल था, वहां पे लेके गए प्रचार कर, वहां पे गए हम। तो स्कूल जब गए जाते जाते लेट हो गया था, स्कूल में स्टाफ भी नहीं थे, तो हम बैठे थे, बोले कि गाड़ी अभी 35 किलोमीटर दूर में है, फिर हम स्टेशन से इतना दूर आए हैं, फिर अभी कोई ले नहीं रहा है, कैसा करेंगे। बाद में भगवान को प्रार्थना करें प्रभु आप ही हमको रक्षा कर सकते हैं। तो बाद में कुछ समय के बाद स्टाफ लोग आए, स्टाफ आए भगवत गीता एक पीछे मैंने थोड़ा सा कुछ बता दे, 2-3 गीता चला गया। बाद में गाड़ी क्या है, 5 बजे में एक ही गाड़ी बस आता है उस स्टेशन में, उसके बाद बस ही नहीं है वो रोड में, आप आएंगे बराबर टाइम पे तो गाड़ी पकड़ सकते हैं। वहां पे जब आए मैंने प्रचार कर, एक तो 3 गीता गया है, बाद में क्या करेंगे। आ रहे हैं, एक आदमी को लिफ्ट मांगे, वो आया लिफ्ट हमको गाड़ी में बैठा के आया, लेकिन वो बोले क्या है महाराज क्या है आपके पास, तो नहीं मेरे पास ये ग्रंथ है 3 गीता खाली किया है, गाड़ी बहुत दूर में लगा है, इच्छा है कि सब ग्रंथ जानने के लिए लेकिन कोई नहीं ले रहा है, क्या अभी गाड़ी में नहीं पहुंच बैठेंगे तो फिर गाड़ी भी रात को रहना पड़ेगा। तो क्या महाराज इसके लिए आप चिंता कर रहे हैं, लीजिए कितना सारा किताबें जो दीजिए मैं ले लूंगा। सब वो ले लिया, गाड़ी वाला ले लिया। तो जब स्टेशन में पहुंचते ही तुरंत बस आ गया, देखिए मैंने कैसा ये सब एक्सपीरियंस देखिए कैसा। एक बार ऐसा एक आदमी चैतन्य चरितामृत लेने के लिए बोला, हम उसके घर में आए तो है ही नहीं, फिर लाने के लिए गए गाड़ी के पास लाने के लिए गए, जब लीडर बोले क्या प्रसाद पा लो बाद में जाओ, बाद में प्रसाद पाने बोले नहीं हम चैतन्य चरितामृत देना है। तो आए देखे कि वो जब शाम को आए वहां पे तो आदमी नहीं है, बाद में 8-9 बजे वो आदमी आया, उसको वेट कर रहे थे घर के सामने, ऐसा बैठे हैं कोई घर के सामने, कब आएगा हम देंगे। तो आया ले लिया चैतन्य चरितामृत, लेकिन वहां से बस जाने के लिए कोई बस ही नहीं है, तो वो रात 6 बजे के बाद बस नहीं जाता। सोच रहे क्या करूं, तो एक गुरु ठाकुर अनुकूल चंद्र का एक फॉलोअर एक आया, महाराज जी चलिए हमारे घर में चलिए, मैं आपको अच्छी तरह से खिलाऊंगा, भोजन कराऊंगा, बाद में आप कल सुबह चले जाना। लेकिन मेरे को डर लग रहा है, किताब सब चला गया है, पैसा हाथ में है, कोई उठाने ना ले रात को, तो मैं वेट कर रहा हूं। 10-11 बजे तक वेट किया कि लीडर आएंगे गाड़ी लेके मेरे को लेके जाएंगे, लेकिन गाड़ी लीडर ही नहीं आए। मैंने सात वो सोचे कि शाम को आ जाएगा, लेकिन वो आए नहीं, 30 किलोमीटर दूर में गाड़ी लगा है। तो बाद में हम क्या किए, उसके घर में ऐसा पैसा को ऐसा रख के सो गए, कोई ना ले बोले, रात में सोए ही नहीं, नींद कौन उठा लेगा बोल के। जब सुबह हुआ 3 बजा 4 बजते ही क्या हुआ, तुरंत आके किसको बोले नहीं, उसको बोले ना ब्रश किए ना स्नान किए कुछ भी नहीं किए, आके 7 बजे से गाड़ी जाता है वहां पे, आके मैंने बस में चले गए। जब लीडर आए थे स्टेशन को लेने के लिए, मैं बोला आप लेने के लिए क्यों नहीं आए, बोले नहीं 11:30 बज गया था, मैंने कुछ कारण के बस वो नहीं आ पाए। तो बाद में वो भी उस दिन रात में लीडर भी प्रसाद नहीं पाए कि एक भक्त नहीं है गाड़ी में कैसा पाऊंगा बोल, बाद में लेके गए प्रसाद पाके, उस दिन मैं प्रसाद नहीं किया, दूसरे दिन किया। तो कहने का मतलब ये है कि आप मेहनत किए रहे, सेवा कर रहे हैं, तो सेवा का फल जरूर मिलता है, जरूर मिलता है, इसके में कोई संकोच नहीं है। इसलिए हमको भक्ति में दृढ़ता के साथ, आनंद के साथ, हंसते हंसते भगवान की सेवा करना चाहिए। अपने प्रारब्ध कर्म के वजह से कुछ गलती हो भी जाए, लेकिन हम अपने को गलती को स्वीकार करके, हमारा भूल स्वीकार करके भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। तब वैष्णव का कृपा से, गुरु आचार्य जी का कृपा से जरूर हम भक्ति में हमारे लक्ष्य हासिल हो सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। जैसा यहाँ पे बलि महाराज, देवराज इंद्र का गाली सुनने के बाद ही देवराज, कुछ भी बलि महाराज रिएक्शन नहीं किए, संपूर्ण रूप में शांत चित्त में उसको सहन कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं सब कुछ भगवान के हिसाब से हो रहा है, प्रकृति के हिसाब से हो रहा है, आप इसका कुछ का, आपके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम वैष्णव समाज में हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, साधु गुरु आचार्य जी का अनुगत्य में उनके निर्देश पालन करके भक्ति में आगे बढ़ेंगे, जरूर हमारा लक्ष्य हासिल हो सकता है। हरे कृष्ण, बोलने में कुछ त्रुटि हो गई तो आप सब वैष्णव हमको क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्ण। वंशाकलोतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च वृत्तानुपानभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृन्द की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। किसी का कुछ प्रश्न, कुछ टीका टिप्पणी कुछ है तो पूछ सकते हैं। बोलिए हनुमान प्रभु, बोलिए, माइक दीजिए।
हरे कृष्ण। जब बलि महाराज जाने गए थे कि इंद्र के द्वारा जब वज्र का प्रहार होगा तो उनकी मृत्यु निश्चित है, बच नहीं पाएंगे, और उनके पास प्रतिकार का कोई साधन नहीं था, फिर भी उन्होंने उनको समर्पण किया नहीं अपना मृत्यु बचाने के लिए।
सही प्रश्न। देखिए, जो भगवान का भक्त है वो केवल भगवान के पास ही सिर झुकाता है। शुद्ध आचार्य वैष्णव के पास ही सिर झुकाता है, किसी के पास नहीं झुकाता। कोई अगर कितना भी डराए क्यों, धमकाए क्यों, गाली भी क्यों ना दे, बलि महाराज को मालूम है इंद्र का स्थिति क्या है, देवराज इंद्र का पाप पोस्ट क्या है, लेकिन बलि महाराज संपूर्ण आत्मज्ञानी थे, वैष्णव थे, इसलिए उनका बोलने के बाद भी उनके मन में कुछ भी रिएक्शन नहीं हुआ। वो सोच रहे हैं ये उसका कर्म है, अगर मारेगा भगवान का, अगर इच्छा नहीं है तो थोड़ी ही मार सकता है। प्रेरणा भी जैसा वृत्रासुर को देवराज इंद्र गाली दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर भी वृत्रासुर बोल रहे हैं मैं अभी मुझे जल्दी तुम मृत्युवरण मार दो, मैं भगवत धाम जाऊंगा, भगवान की सेवा में लग जाऊंगा, इसके लिए मुझे चाहिए तुम जितना जल्दी हो सके मेरे को मृत्युवरण करो, मार दो। क्यों बोल रहे हैं वृत्रासुर, क्यों बोल रहे हैं उनको भक्त, क्योंकि दूसरे शरीर पाने के बाद भी उनका भक्त का गुण नहीं गया। जैसा भरत महाराज हरिन शरीर पाने के बाद भी वो जो स्वाभ जो गुण किसके लिए हरिन सन पाए, क्यों पाए, उसको भूले ही नहीं। उस हिसाब से वो दूसरे हरिन सबके साथ नहीं मिलते थे, अलग जगह में रहते थे, सूखा पत्ता खाते थे। जो भक्त होता है वो हर स्थिति में क्यों ना, कैसा भी परिस्थिति क्यों ना, जितना जटिल परिस्थिति क्यों ना आए, कभी भी अपने स्वरूप से विच्युत नहीं होता। और भगवान की भक्ति में वो जान जाता है संसार क्या है, जगत क्या है, कैसा मेरे को चलना चाहिए। उसके लिए उनके लिए वो सब हमारे विचार से अलग है, परे हैं, हम अपने बुद्धि से उसको नहीं माप सकते। समझ रहे हैं प्रभु? ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय।